تفسير. سورت لقمان مکی سورت ہے، اس کی 34 آیات، 34 آیات، 4 رکوع، جبکہ الفاظ اور کلمات کی تعداد 554 554، حروف کی تعداد 2217 2217. اس سورت میں ایک حکیم لقمان کا ذکر آیا ہے، اور انہی کے نام پر جو ہے اس سورت کا نام رکھا گیا. اللہ رب العزت نے حکیم لقمان کی حکیمانہ باتوں کو، نصیحتوں کو قرآن میں بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹے سے بیان کی تھی، اور اسی پہ سورت کا نام رکھا گیا. اس سورت کے مضامین پہ اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گی کہ یہ وہ سورت ہے، یہ اس زمانے میں سورت نازل ہوئی جب اسلامی دعوت کو دبانے کے لیے ظلم و ستم کا آغاز ہو چکا تھا. ہر طرح کے ہتھ کنڈے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن ابھی مخالفت کا طوفان جو تھا اس نے پوری شدت اختیار نہیں کی تھی. اس سورت میں توحید کی صداقت کو سمجھایا گیا ہے. نمبر ایک، توحید کی صداقت. نمبر دو، باپ دادا کی اندھی تقلید کو چھوڑنے کی دعوت دی گئی ہے. نمبر تین، لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اس تعلیم پر غور کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیش کر رہے تھے. سورت لقمان جو ہے میری بہت چھوٹی عمر میں جو میں نے سورت تفسیر سے پڑھی تھی، میٹرک کے بعد پڑھی تھی شاید، میں اس وقت گیارہویں میں تھی، 11th grade میں جب میں نے اس کو تفسیر سے پڑھا تھا، اور مجھے بہت پسند ہے یہ سورت. حالانکہ پورا قرآن ہی بہت اچھا ہے، اور کئی دفعہ پڑھا ہے تفسیر سے، الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. لیکن اس سورت کو جیسے باقی سورتوں کی نسبت میں دیکھتی ہوں تو جو سورتیں میں نے چھوٹی عمر میں پڑھی ان میں سے ہے، مجھے ایسے لگتا ہے اس کی جیسے تفسیر میں جو اردو میں مفسرین نے جو اپنی رائے اور جو لائنیں لکھی ہیں نا، مجھے وہ بھی یاد ہے. آپ دیکھیں کہ چھوٹی عمر میں ذہن انسان کا کتنا چلتا ہے نا، الفاظ، جملے اور مختلف باتیں جب میں سوچتی ہوں تو مجھے وہ بھی یاد ہے. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں، میرے ساتھ میں نیبر میں ایک رہتی ہیں، حافظہ ہیں قرآن کی، جارڈن کی ہیں، اور ان کے پاس اجازہ ہے قرآن کا، بہت اچھی جو ہے وہ ان کی تلاوت اور تجوید ہے. تو میں ان کے پاس گئی، میں نے کہا میں چاہتی ہوں آپ آمنہ کو، کیونکہ ریڈنگ تو اس کو ماشاءاللہ آتی ہے، کچھ پارے بھی حفظ ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کو صحیح جیسے پوری طرح تجوید کے رولز ریگولیشن سارے آئے. تو مجھے ایک عورت کہنے، ایک دو لوگوں نے کہا کہ یہ بچی ابھی چھوٹی ہے، حالانکہ وہ 11 کی ماشاءاللہ ہو چکی ہے آمنہ. تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ چھوٹی نہیں ہے. میں نے کہا اس کے جتنے اس کے رولز ہیں نا سارے میں سکھانے کی ذمہ داری لیتی ہوں. اور ٹیچر کہنے لگی ریڈنگ میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ رولز اس کے لیے مشکل نہ ہو. تو میں نے کہا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. تو انگلش کے بارے میں بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، تو ہم اس کو ہی، شی، اٹ، دیٹ اور کلر اور سارا کچھ سکھانا شروع کر دیتے ہیں. جہاں پہ قرآن اور اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو شیطان بھی ڈراتا ہے اور ہم بھی ڈراتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رکھیں، آپ بچوں کو لے کے بیٹھیں، آپ ان کو پڑھائیں، آپ ان کو بتائیں، آپ جو بھی بات کر رہی ہیں 50% 60% 70% کچھ نہ کچھ ان کو ضرور سمجھ میں آئے گا. پھر دوسری دفعہ لے کے بیٹھے، پھر تیسری دفعہ لے کے بیٹھے، और आप देखेंगी कि वो जो पहली बातें थी उन्होंने जो सुनी हुई बातें हैं ना वो भी उनको बहुत फायदा देंगी। तो कभी भी मायूस नहीं होते, कभी हारते नहीं है। तो बहरहाल जब मैं सूरत लुकमान को पढ़ती हूँ तो ऐसे लगता है दिल ईमान से भर जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो दिन याद आते हैं जब मैंने इसको पढ़ा था, और आज मैं फिर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी के इतने साल दिए, और आज मैं फिर जो है आपके साथ इस सूरत को पढ़ रही हूँ। आइए इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुकत्तआत हैं जिनके मानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बेहतर जानते हैं। तिलक आयातुल किताबिल हकीम हुदा व रहमतन लिल मुहसिनीन अल्लज़ीना युकीमूना स्सलाता व युतूना ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम उलाइक अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। सूरत लुकमान का जो आगाज है बड़ा ही जबरदस्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये किताबे हकीम की आयात हैं। तिलका ये आयातु आयत वाहिद है, आयात जमा है, कि ये आयात हैं। अल किताबी किताब कतबा लिखने को कहते हैं और अल किताब लिखी हुई। तो इससे मुराद दो राय हैं इससे। एक राय तो ये है कि इससे मुराद है पूरा कुरान, दूसरी राय ये है कि इससे मुराद है सूरत लुकमान। और दोनों ही सही हैं कि पूरे कुरान की आयात और सूरत लुकमान की आयात जो है वो कैसी हैं, अल हकीम, हकीमाना है, हिकमत से लबरेज है। कुरान की हर बात जो है ये हकीमाना है। तो कुरान की पहली सिफ जो हमारे सामने रखी गई है वो क्या है कि कुरान की आयात जो है वो हिकमत के खजाने हैं, हिकमत से लबरेज हैं। और आप देखेंगी आयत नंबर 1 से लेकर 11 तक सूरत लुकमान की इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि कुरान मजीद पुर हिकमत किताब है, लोगों के लिए हदायत और रहमत बनकर नाजिल हुई। तो पहली सिफत कुरान की क्या है, अल हकीम, हिकमत से माला माल है। और ये कौन कह रहा है, ये मेरा और आपका रब फरमा रहा है। हकीम के तीन मानी मुफस्सरीन ने बयान किए हैं। नंबर एक, कुरान हिकमतों से भरी किताब है। नंबर दो, किताब मुहकम है, यानी कयामत तक कोई किताब इसे मनसूख नहीं करेगी। किताब जो है ये मुहकम है, हर किस्म के नक्स से खलल से जो है ये पाक है। आप देखें कि जैसे जानवर जब चल रहा होता है तो अरब लोग क्या करते थे कि उसको जो है वो जो रस्सी होती थी ये अब खींचते थे, लगाम को खींचते थे तो उसको कंट्रोल कर लेते थे ना, तो मजबूती के लिए भी फिर वो इस्तेमाल होता है ना। तो इसी तरह कुरान मजीद जो है हकीमाना बातें भी हैं, इसके साथ मजबूत है, मुहकम है, हर किस्म के नक्स से खलल से कुरान जो है वो पाक है। और तीसरे इसके मानी है कि इसकी जो खबरें हैं, इसकी जो इत्तलात हैं, इसके जो किस्से हैं, इसकी जो पेशीन गोईयां हैं, वो जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, उनके अंदर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। तो ये है कुरान की पहली सिफ्त। और यहां पे जैसे जो तिल का आया है ये इशारा है, इशारा, और यहां पे ये इशारा जो है आना चाहिए था हाजे ही, लेकिन करीब की बजाय इशारा बईद इस्तेमाल हुआ है। मुफस्सरीन कहते हैं ये कुरान की अजमत का बयान करने के लिए है। कुरान की दूसरी सिफ्त है हुदन, हदायत। तो दूसरी सिर्फ जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताई है वो है कि कुरान मजीद जो है ये हदायत देने वाली किताब है। तो आप देखें इसके माने क्या है कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा तो उसे जो है वो हदायत मिलेगी, लेकिन हदायत किसे मिलेगी? जो कि हदायत चाहेगा। और तीसरी सिफत है रहमत के, इसकी हकीमाना बातों पर जो अमल करेगा तो वो ऐसा शख्स होगा कि उसे जो है वो रहमत मिलेगी। तो कुरान की जो सिफात है कि ये हकीम हकीमाना बातें हैं, हदायत की तरफ रहनुमाई करती है, और रहमत रहमत बनकर आई है, मुसीबत नहीं है, परेशानी नहीं है कुरान मजीद। अच्छा, कुरान की ये हकीमाना हदायत और रहमत की जो सिफात हैं वो किन लोगों के हिस्से में आएंगी? कौन खुशकिस्मत है जिनको कुरान से ये तीन चीजें जो है वो मिलेंगी, हिकमत भी, हदायत भी और रहमत भी? इसको आप सर्कल कर ले, लिल मोहसिनीन, एहसान करने वालों के लिए। मोहसिन कौन होते हैं? मोहसिन मोहसिन जो है ऐसे लोग होते हैं जो हुस्ने अमल का तरीका इख्तियार करते हैं, जो नेक बनना चाहते हैं, जिन्हें भलाई की जुस्तजू है, जिनकी ये सिफत होती है कि जब उनको बुराइयों पर मुतनब्बे कर दिया जाए फौरन रुक जाते हैं, जब खैर की राहें उनके सामने खोल कर रख दी जाए तो उन पर चलने लगते हैं। ये होते हैं मोहसिनीन। एहसान किसे कहते हैं? एहसान की तारीफ आप पढ़ चुकी है ना कि एहसान जो है इसके मानी ये है कि इंसान जो है वो अपने रब की इबादत इस तरह करे गोया कि वो अल्लाह को देख रहा है, और अगर ऐसे नहीं कर सकता तो कम से कम ये तो सोचे कि मेरा रब मुझे देख रहा है। अंता बुदुल्लाह का अन्ना का तरा है ना, कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे करे गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। वह इल्लम यराहू, और अगर आप जो है उसे नहीं देख रहे तो फिर क्या है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो ये है एहसान का सबसे आला दर्जा। तो मोहसिनीन कौन होते हैं? मोहसिनीन के यानी मोहसिन की ये जमा है, हुसन से ये लफ्ज निकला है, ब्यूटीफाई करना, तो अमल को जाहरी तौर पे भी खूबसूरत करना और बातनी तौर पे भी। आप एहसान के मानी पढ़ चुकी है ना, जैसे कुरान में बार बार कहा गया वबिल वालिदैनि एहसाना, वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो जिनके भी हकूक हैं तो उनके साथ एहसान का रवैया अख्तियार करना। एहसान का मतलब क्या है? जैसे फर्ज नहीं पढ़ने वाला, नफल पढ़ने वाला, ये है एहसान। सिर्फ खाना नहीं आप पका रहे, घर वालों को सिर्फ खाना नहीं दे रहे, आप सलाद भी दे रहे हैं, आप चटनी भी दे रहे हैं, एक सालन नहीं दो दो सालन बना रहे हैं, खुशी के साथ कर रहे हैं, पटख नहीं रहे लोगों के सामने, अपने घर वालों के सामने खाना, वो सास ससुर है, वो शोहर है, बच्चे हैं, पटाख पटाख या गुस्से के साथ या ऐसे नहीं, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। तो हुस्ने सलूक करना एक तो ये है, दूसरे इसके मानी है नेकियां करना, क्योंकि मोहसिन हसाना नेकी को कहते हैं और मोहसिनात इसकी जमा है, नेकियां करने वाले, बुराइयों से दूर रहने वाले। तीसरे इसके मानी एहसान के बताए जाते हैं अल्लाह की इबादत में इखलास इख्तियार करना, खुशू खुजू के साथ एहसान के दर्जे की नेकी जो है वो इख्तियार करना। तो आप देखिए कि कुरान से कौन लोग फायदा उठा सकते हैं, हिकमत हदायत और रहमत किन के हिस्से में आएगी? जो एहसान के दर्जे की नेकी करेंगे। अब आप सोच लें कि आप कहाँ पे खड़े हैं, मैं कहाँ पे खड़े हूं। तो ये है कुरान से फायदा उठाने की पहली सिफ्त, लिल मोहसिनीन, इसको आप सर्कल कर लें। दूसरी सिफ्त आप देखेंगी, अब और क्या काम बताए जा रहे हैं, अल्लज़ीना युकीमून सलाता, कि वो नमाज को कायम करते हैं, इसके क्या मानी है? अब यहाँ पे मजीद नेकी के जो काम हैं उनकी फहरिस्त गिनवाई जा रही है, और पहली चीज ये है कि वो नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते नहीं बल्कि नमाज कायम करते हैं। खुदा परस्ती, खुदा तरसी उनकी मुस्तकिल आदत है, और आपको पता है कि वो जो नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार करते हैं, जो सही नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाजें उनको बुराई से रोकती हैं। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये आप पढ़ चुके हैं ना। और अब यहाँ पे भी पहली सिफ्त और मजीद क्या बताई, नेकी क्या बताई जा रही है, नमाज कायम करना। दूसरी चीज वही यूतू न जकाता, कि वो जकात को अदा करते हैं। तो जकात की असल रूह क्या है कि इसार और कुर्बानी का जज्बा उनके अंदर मुस्तहकम होता है। जैसे अक्सर औरतें क्या कहती हैं, मैंने जेवर रखा हुआ है, पहनती भी कम, और ऐसे ही मुझे जकात देनी पड़ती है ना। और जकात क्या है, ये फर्ज है। तो एहसान के दर्जे की नेकी क्या है कि सदकात भी देते हैं, इंफाक करते हैं, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। माल की मोहब्बत दबती है, दुनिया की मोहब्बत दबती है, और रजाए इलाही की तलब जो है वो उभरती है। यह है दूसरी सिफ्त। तीसरी सिफ्त क्या है, वहुम बिल आखिरती हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत पर ईमान लाना, यकीन रखना, ये जो यकीन है ना, ईकान, ये ईमान का अगला दर्जा है। आखिरत पर ईमान के मानी क्या है कि उनके अंदर जवाबदेही का एहसास रहता है। वो जानवरों की तरह नहीं चीते कि वो जिसके खेत में जाता है, चाहता है, चरता है, चुगता है, वो जानवर बनकर नहीं जीते। जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया, बल्कि वो याद रखते हैं कि अल्लाह है और मैं उसकी बंदी हूं, मैं उसका बंदा हूं, मैं उसका गुलाम हूं, मुझे अल्लाह के सामने जवाबदेही करनी है। तो ये है वो लोग, ये तीन सिफात रखने के साथ साथ फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं, वा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही फलाह पाने वाले हैं। तो जिनके अंदर ये सिफात पाई जाती हैं, तो वो ऐसे नहीं होते कि कभी नेकी हो जाती है। जैसे आमतौर पर क्या होता है कि गुनाह कभी कभी होता है ना, इंसान से भूल कर गुनाह होता है। नेकी मुस्तकिलन आदत होती है इंसान की कि नेकी करता है, भूल कर गुनाह हो जाता है। तो वो इस शान के होते हैं, उनका इतना खूबसूरत किरदार होता है कि बदी उनसे हो जाती है और नेकी वो जानबूझ कर करते हैं, नेकी करना उनकी आदत बन जाती है। और अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से मनादी की जा रही है, वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, के यही लोग दर हकीकत अपने रब के सही रास्ते पर हैं, और यही है जो जहन्नुम से निजात पाकर जन्नत के हकदार बन जाएंगे। तो आपको क्या बनना है, मुझे क्या बनना है, मुझे मुहसिना बनना है, एहसान के दर्जे की नेकी करनी है, फर्जी नहीं नफल अदा करने हैं, जकाती नहीं सदकात देने हैं, और दुनिया से मोहब्बत करने की बजाय आखिरत से मोहब्बत करनी है, एक जिम्मेदार बनकर जीना है, और दुनिया में रहना है और आखिरत में जीना है। तो ये जो नमाज, जकात और आखिरत पर यकीन है, ये तीनों ऐसी अहम सिफात हैं कि जो इनको अदा करता है फिर वो मोहसिन बन जाता है, फिर वो मुफलिह बन जाता है, फिर वो मुत्तकी बन जाता है, फिर वो ईमान का अगला दर्जा, ईकान का दर्जा जो है वो इख्तियार कर लेता है। तो बाकी सारे लोग गुमराह हैं, जिनके अंदर ये सिफात हैं, ये वो लोग हैं जो कि अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं कि शाबाश, ये बहुत अच्छे लोग हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाले, और ये हैं फलाह पाने वाले। और फलाह के वो मानी आप पहले पढ़ चुकी हैं, और कद अफलाह अल मोमिनून आपने सूरत मोमिनून में भी पढ़े थे, और आपने सूरत अल बकरा के आगाज में भी पढ़े थे मोमिनीन की सिफात के बाद। और आप याद रखें कि इसके अंदर जो है तीन चीजें पाई जाती हैं, फाड़ना, कामयाबी और बेका। और फलाह उन किसान को भी कहते हैं, फलाह ऐसी कामयाबी है जिसमें इंसान की अपनी मेहनत और कोशिश हो। तो अपनी मेहनत और कोशिश फिर क्या है कि अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है। तो एक तरफ है कुरान की दावत जो इंसान के अंदर ऐसा किरदार पैदा करती है, अच्छा, कुरान के बिल मुकाबिल क्या है? क्योंकि जिस वक्त कुरान मजीद नाजिल हुआ उस वक्त कुफारे मक्का ये समझते थे और अलानिया कहते थे कि अगर हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लिया, अगर हम कुरान पर ईमान ले आए, तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जैसे आपने पिछली सूरत में ही पढ़ा कि अहले मक्का कहते थे कि दीन इस्लाम पर चले तो हम तो उचक लिए जाएंगे, हमारी तिजारत बर्बाद खत्म हो जाएगी। आज भी लोग कहते हैं रिश्ते नहीं होते, हम तो हमारी तिजारत ही नहीं चलेगी अगर हमने झूठ बोलना छोड़ दिया। आज भी लोग ये कहते हैं, तो वो लोग भी ये समझते थे कि अगर हमने कुरान पर अमल कर लिया तो फिर जो है हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और हालांकि पिछली आयत जो आपने पढ़ी, अल्लाह ताला कहते हैं वाउलाई का हुमुल मुफ्लिहून, कि ये तो फलाह पाने वाले हैं। तो याद रखे कि एक है कुरान मजीद के मुताबिक जिंदगी गुजारना और दूसरा है अपनी मर्जी करना, तफरीह की जिंदगी गुजारना। एक है कुरान के मुताबिक और दूसरा है ये है कि तफरीही बातों में मशगूल होना, जहनी बेराह रवि जो है उस पर चलना, बेफायदा बातें, फजूल बातें, गैर संजीदगी की बातें। तो दो किरदार है, एक कुरान को संजीदगी से कबूल करके उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले, क्योंकि हकीमाना बातें है ना, संजीदा बातें, उस पर ध्यान देने वाला किरदार, वो है फलाह पाने वाले। अब यहाँ पे दूसरा किरदार जो है वो बताया जा रहा है। आप भी अपना मुहासबा करें कि आप कहाँ पे खड़ी हैं। एक तरफ है किताबे इलाही के मुताबिक जिंदगी और दूसरी है इससे हटकर, और अहले मक्का की मिसाल पेश की जा रही है। वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल अन सबीलिल्लाह, और इंसानों में से कोई ऐसा भी है, वमिनन नासी और लोगों में से, मन कोई यश्तरी, यश्तरी जो है वैसे तो इसके मानी है कि खरीदना बेचना, यानी एक खरीद रहा है तो दूसरा बेच रहा है, यश्तरी है ना, या सूरत अल बकरा में पढ़ चुकी हैं। तो यश्तरी वो खरीदता है। ये याद रखिएगा कि ये जो यश्तरी लफ्ज है इसके अंदर जो है वो तरजीह देना के मानी पैदा होते हैं, तरजीह देना। इसके मानी क्या है कि कुरान जो है उसको छोड़कर अल्लाह की हकीमाना बातों को, हदायत और रहमत वाली आयात को छोड़कर लोग क्या करते हैं, मैयश्तरी जो खरीद कर लाता है, लहवल हदीसी, लहवल हदीस कलामे दिल फरेब। क्यों खरीद कर लाता है, लियुदिल अन सबीलिल्लाह, ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटका दे। जो दिल्ला जो है, द्वाद लाम लाम, इसके दो मानी होते हैं, एक होता है गुमराह हो जाना, दूसरा होता है भूल जाना, और यहाँ पे जो है ये गुमराही भटकने के मानी में है, ले युदिल्ला ताकि वो गुमराह कर दे, लाम लाम में इल्लत है। वजह बताई जा रही है कि लाहवल हदीस क्यों खरीद कर लाते हैं, ताकि वो गुमराह कर दे, अन सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते से, कुरान के रास्ते से, हदायत के रास्ते से, बगैर इल्म, इल्म के बगैर, व यत्तखिज़हा हुजुआ, और वो बनाए इसको, यानी कुरान की जो दावत है, कुरान का जो पैगाम है, इसको बना दे हुजुआ मजाक, तो कुरान को मजाक में उड़ा दे, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐसे लोगों के लिए सख्त जलील करने वाला अजाब है। जो अल्लाह के दीन, अल्लाह की आयात और इसके रसूल का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह भी इसके बदले में इनको सख्त अजाब में बदल देगा। मैंने उस वक्त जब ये सूरत पढ़ी थी और मैं जब इस आयत पर पहुंची थी, तो इसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। मैं बड़ी हैरान थी कि अल्लाह ताला ने इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, और आज भी मुझ पे बड़ा असर होता है इस बात का ना। अब आप आइए इस आयत पर गौर करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि कहाँ है कि गाना नहीं सुनना चाहिए। लोग कहते हैं मौसीकी रूह की गिजा है। अब आप देखें कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं यहां पर। लहवल हदीस का लफ्ज बहुत अहम है। लहव किसे कहते हैं? अरबी जबान में लहव से मुराद ऐसी बात जो आदमी को अपने अंदर मशगूल करके हर दूसरी चीज से गाफिल कर दे। इससे मुराद है बुरी, फजूल, बेहुदा बातें, मसलन गपशप, खुराफात, हंसी मजाक, दास्ताने, अफसाने, नावल, गाना बजाना और इसी तरह की दूसरी चीजें। तो आप देखें कि वो क्या करता है कि लहवल हदीस खरीद कर लाता है। नेकी आप देखें मुफ्त भी रास नहीं आती, और गुनाह जो है, जो शुगल और तफरी और ऐसी चीजें जो अल्लाह से गाफिल कर दें, जो आखरत से गाफिल कर दें, जो अल्लाह के रसूल से गाफिल कर दें, तो लोग क्या करते हैं, लोगों में से कोई ऐसा है जो उसे खरीद कर लाता है, वो तरजीह देता है उसको, और अल्लाह के कलाम से जो है वो बेरुखी बरतता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि खरीद कर लाने वाला कौन है, इससे मुराद कौन है। मुफस्सरीन कहते हैं कि वैसे तो इससे मुराद है हर वो किरदार जो इसके अंदर मसरूफ है, लेकिन उस जमाने में ये आयात नदर बिन हारिस के बारे में नाजिल हुई। नदर बिन हारिस, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कुफारे मक्का की सारी कोशिशों के बावजूद फैलती जा रही थी, तो नदर बिन हारिस ने कुरैश के लोगों से कहा, जिस तरह तुम इस शख्स का मुकाबला कर रहे हो, इससे काम ना चलेगा। ये शख्स तुम्हारे दरमियान बचपन से बड़ी उम्र को, उधेड़ उम्र को पहुंचा है। आज तक तो अपने अखलाक में तुम्हारा सबसे बेहतर आदमी था, सबसे ज्यादा सच्चा और सबसे बढ़कर ईमानदार। अब तुम कहते हो कि वो काहिन है, साहिर है, शायर है, मजनू है, आखिर इन बातों पर कौन यकीन करेगा। तो उसने क्या किया कि अपनी कौम के लोगों से कहने लगा कि तुम्हारी ये जो बातें हैं जो तुम कह रहे हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये नहीं चलेंगी। ठहरो ठहरो, मैं इसका इलाज करता हूं। इसके बाद वो मक्का से इराक गया और वहां से जो शाहाने अजम थे उनके किस्से लेकर आया, रुस्तम और असफन यार की दास्तानें खरीद कर लाया। फिर उसने किस्सा गोई की महफिलें मुनक्किद करनी शुरू की। उसने लौंडियां खरीद कर रखी हुई थी, गाने बजाने वाली लौंडियां खरीद रखी थी। जब कोई इस्लाम कबूल करने की कोशिश करता या पता चलता कि वो इस्लाम से मुतासिर हो रहा है या कुरान उस पर असर कर रहा है या वो कुरान को सुनना चाहता है, तो वो इसका ध्यान रखता, और जूं ही पता चलता कि कोई कुरान, इस्लाम, रसूल अल्लाह की बातों से मुतासिर हो रहा है, उस पर एक लौंडी मुसल्लत कर देता, तो अपनी लौंडियों को उसके पास भेज देता। लौंडियों का काम क्या था कि उसे शराब पिलाएं, गाने सुनाएं, उसके साथ दिल लगाएं ताकि उस शख्स का दिल इस्लाम से, कुरान से हट जाए, और फिर खेल तमाशे और वो रक्स और सरूद की महफिलें जो है वो उनके जरिए लोगों को दीन से दूर करता। और हर दौर में ऐसा हुआ है कि लोग जो है वो जिंदगी के संजीदा मसाइल की तरफ तवज्जो ही ना कर सके। तो आ तुझको बताऊं मैं तकदीरे उमम क्या है, आ तुझको बताऊं मैं तकदीरे उमम क्या है, शमसीरो सना अव्वल, ताऊसो रुबाब आखिर। कि जब कौमें मेहनत करती हैं तो फिर वो दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर वो देव आमदन की तरह बढ़ती चली जाती हैं। जब वो गाना बजाना, रक्स और मौसीकी और ऐसी चीजों में जो है वो खो जाती हैं, साज मिजराब, तो फिर जो है फिर उन पर जवाल आ जाता है। और आज मुसलमानों का ये हाल है। तो एक तो है नदर बिन हारिस, और दूसरा हर वो शख्स जो कि नदर बिन हारिस का किरदार अदा करता है। तो इलाहवल हदीस खरीदने से मुराद क्या है? ऐसे आलात अपने घर में खरीद कर लाना जिससे इलाहवल हदीस को फरोग मिले। मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे मुराद है कहानियां, अफसाने, ड्रामे, मूवीज, नावल और इसी तरह सेक्स और इसी तरह की चीजें, या अखबारात या ऐसी तस्वीरें, मूवीज जो इसको आम करें, और इससे फिर रेडियो, टीवी, वीसीआर, फिल्मों का इस्तेमाल वगैरह। यानी रेडियो, टीवी, वीसीआर का अगर आप अच्छा इस्तेमाल करें तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये भी सही नहीं है। तो और जैसे आप देखें कि आजकल ये गाने बजाने वाली, डांस करने वाली, इनको क्या कहते हैं? फिल्मी स्टार कहते हैं, स्टार, फनकार, सकाफती सफीर। यानी अमेरिका में पिछले दिनों खबर आई हुई थी, मुसलमान लड़की है जिसने जो है वो हुसन का अवार्ड जो है वो जीता है ना, मलका हुसन का अवार्ड जीता है। आप मुझे बताएं तो ये, और क्या कहते हैं कि जी ये है सकाफती सफीर है, और ये दिल फरेब नाम है जो के लोग देते हैं। जैसे यानी हमारे यहाँ बड़े भी और बच्चे भी और जवान भी और यूथ भी, टीनेजर जो है वो किस तरह इसमें लावल हदीस में जो है वो कैसे कानों के साथ लगे हुए होते हैं, आईफोन वगैरह, और फिर और साथ क्या होता है कि सर हिल रहा है, म्यूजिक सुन रहे हैं, और पीरियड मिस हो रहे हैं, लड़कियों के साथ हैं, और स्टार्ट कैसे करते हैं, यही कहते हैं ना कि वो बस स्माइल देना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, बस खैरियत पूछ रहे हैं, नाम, खैरी नाम वगैरह। फिर अगली बात क्या होती है कि जरा नोट्स का तबादला, ईमेल कर ले लेते हैं, फोन नंबर ले लेते हैं, जरूरत पड़ जाती है नोट्स वगैरह। फिर उसके बाद क्या होता है, सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन इसके भी मार्क्स हैं। और अभी 11th ग्रेड की एक बच्ची बता रही थी यहाँ पे, मैं मिसी सागर की आपको बात बता रही हूँ, कि वो बता रही थी कि हमारे स्कूल में, हाई स्कूल में हमारी टीचर ने कहा है कि आप अपना पार्टनर कैसा चाहते हैं, अपनी लाइफ का पार्टनर कैसा चाहते हैं, आप उसकी 3 सिफात लिखें। और फिर हर स्टूडेंट से उन्होंने 3 सिफात लिखवाई, और फिर कहा कि आपकी ये जो 3 सिफात हैं, यानी लड़की के साथ कौन सा लड़का मैच करेगा, तो अब मेरे पास सबकी चीजें आ गई हैं, तो आप में से कोई भी जो है वो चाहता है कि मुझे पता चले कि ये 3 सिफात किसके अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि अपने बारे में भी लिखना था कि मैं इस तरह का मैं पसंद करती हूँ, और अपना तारुफ देना था, दूसरे का भी बताना था। तो अब वो टीचर ये कह रही थी कि अब मैं, हम कपल बना सकते हैं, और आप में से जो चाहते हैं हमारे पास आए, और फॉर्म फिल करवाया। तो आप देख लें कि इस तरह मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम जिसके जरिए से वो इस कल्चर को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, लाहवल हदीस को मैंने आपको इसके जो लुगत के एतबार से मानी थी, और जो मुफस्सरीन ने बताए वो तो आपको बताए। अब मैं आपको बताती हूँ कि लाहवल हदीस के बकसरत सहाबा और ताबईन ने क्या मानी बयान किए हैं, ये अहम बात है, आप इसको सुन लीजिए। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि इस आयत में लाहवल हदीस से क्या मुराद है। आपको पता है अब्दुल्ला बिन मसूद कौन थे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा था कि अगर किसी ने कुरान सीखना हो तो अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखे, उनकी तिलावत हजरत जिब्रील अलैहि सलाम से मिलती थी। उनके बारे में एक दफा, वो थे बड़े कमजोर, और एक दफा सहाबा बैठकर हंस रहे थे कि उनकी टांगे बहुत पतली पतली हैं, जैसे कि बगले की टांगे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। आपने कहा कि तुम अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में ऐसा कहते हो, और अब्दुल्ला बिन मसूद, उनकी नेकियों को अगर एक तराजू में रखा जाए, तराजू के एक पलड़े में, और दूसरे में ओहद पहाड़ को रखा जाए, तो अब्दुल्ला बिन मसूद की नेकियों का पलड़ा जो है वो भारी हो जाए, वो इतने नेक और मुत्तकी थे। तो उन्होंने कहा कि इस आयत में लावल हदीस से क्या मुराद है, यानी किसी ने पूछा उनसे, तो उन्होंने 3 मर्तबा जोर देकर कहा, हुआ वल्लाहुल गिना, खुदा की कसम इससे मुराद गाना है। अब आप बताएं कि ये कौन है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं जो कसम खा के कह रहे हैं 3 मरतबा जोर देके कि इससे मुराद गाना है। फिर इसी तरह حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، حسن بصری اور مقہول، یہ صحابہ بھی ہیں اور اس میں سے کچھ تابعین بھی ہیں. وہ انہوں نے ترمذی سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغنیہ عورتوں کا بیچنا اور خریدنا، یعنی گانے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، یہ جو سنگرز ہوتی ہیں، ان کا بیچنا اور خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے اور نہ ان کی قیمت لینا حلال ہے. یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک روایت میں تو آپ نے فرمایا کہ ان کی قیمت کھانا حرام ہے. اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا اور ان کی خرید و فروخت کرنا حلال نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے. تو ان تینوں حدیثوں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ یہ جو گانا بجانا ہے، صحابہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ گانا ہے، اور اس سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پیئیں گے اور ان کے سامنے معازف اور مزامیر کے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خسف کر دے گا اور بعض کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور سور بنا دے گا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے اور طبلہ اور سرنگی کو حرام کیا ہے، اور فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز جو ہے وہ حرام ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، کہ جو شخص گانے والی لونڈی کی محفل میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا، قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں گانے بجانے والی لونڈیاں ہوتی تھیں، اور اب آزاد عورتیں جو ہیں یہ کام کرتی ہیں، اور کہتے ہیں آرٹ، آرٹسٹ. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ کہا کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر، یعنی ایک طرف قرآن ہے اور اس پر ایمان لانے کی بجائے کیا کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہ کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے. کیوں؟ یدل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، بغیر علم، بغیر علم کے. تو ندر بن حارث کے علاوہ اور لوگ بھی تھے جو یہ کام کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ اسلام کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہ ہو. تو اب تو گھر گھر جو ہے یہ ٹی وی اور ریڈیو اور ایسی محفلیں ہیں کہ اس میں یہ گانا بجانا جو ہے وہ چلتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ شادی بیاہ کی اپنی تقریبات کا ذرا جائزہ لیں کہ اس میں جو ہے وہ شریف گھرانوں میں شریف لڑکیاں جو ہے وہ کس طرح سے وہ ڈھول اور ڈانس، اور اس میں فلمی ایکٹر جو ہے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کیسے کیسے جو ہے وہ حالات ہیں، اور کیسے کیسے رقص و سرود کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس میں خرافات ہوتی ہیں، مکسنگ ہوتی ہے. پھر اس میں اب ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے، ویڈیو کیمرہ ہوتا ہے، پھر اس میں تصویریں بنتی ہیں، لوگ یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر شریف گھرانوں کی لڑکیوں کی پکچریں اور چیزیں جو ہیں وہ باہر جاتی ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں، پھر قرآن نہیں اچھا لگتا، پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، پھر کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، پھر انسان جو ہے وہ خیالی دنیا میں کھونے لگتا ہے، خیالی دنیا میں جانے لگتا ہے. تو یہاں پہ بھی اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیا کرتے ہیں، کہ کلام دل فریب خرید کر کوئی لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے. تو یہ اللہ کے راستے سے ہٹانے کی جو ہے وہ تدابیر ہیں. اس موقع پر آپ یہ بھی دیکھیں، جیسے بچے جو کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انگلش سیکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ ضرور دیکھیں کہ ان کتابوں کے اندر بھی بچے کیا پڑھ رہے ہیں. और फिर बच्चों के साथ डिस्कस करना, उनको समझाना। इसी तरह मूवीज हैं, कार्टूनों के अंदर भी जो है वो उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तसव्वुर और सब बातें जो हैं बड़ी खामोशी के साथ जो है वो मैसेज देती चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो है यही बात बताई जा रही है कि वो शख्स जो कि ईमान लाता है और जो कि कुरान मजीद को हदायत रहमत और हिकमत जिसके लिए कुरान बनता है, तो उसके पास ऐसी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं होता। वो फिर ऐसी चीजों को लीड नहीं करता, फिर वो गैर संजीदा चीजों के लिए संजीदगी इख्तियार नहीं करता, क्योंकि उसका मकसद बहुत आला है। और उसका मकसद क्या है कि उसने कुरान के साथ जो है वो दोस्ती की है, कुरान के साथ इश्क किया है। और जो लोग इसमें मसरूफ होते हैं वो क्या करते हैं, नंबर एक अल्लाह के रास्ते से बगैर इल्म के लोगों को भटकाते हैं, नंबर दो वह यत्ताखिज़ुहा हुज़ुआ और वो अल्लाह के रास्ते की दावत को मजाक में उड़ा देते हैं। तो क्या करते हैं, वो अल्लाह के पैगाम के साथ अल्लाह के दीन के साथ मजाक करते हैं। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐसे लोगों के लिए सख्त अजाब है। हा वो ना नून, हा दो चश्मी, वो और नून इसका रूट है और इसके मानी है जलील करने वाला अजाब। क्यों? इसलिए कि ऐसा किरदार इन्होंने अख्तियार किया है कि अल्लाह की तरफ से उन्हें जलील करने वाला अजाब दिया जाएगा। अब आयत नंबर 7 में मजीद मंजर कशी की जा रही है कि वाइजा तुतला अलैहि आयातुना, कि जब उसे हमारी आयात सुनाई जाती हैं, वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्माहा कअन्ना फी उज़ुनैहि वक्रा फबशिरहु बिअज़ाबिन अलीम। तो जब उन्हें हमारी आयात सुनाई जाती है यानी कुरान की आयात सुनाई जाती है, तो क्या करता है, वल्ला, तो पहले उसकी सिर्फ क्या है, मुंह फेर लेता है, वल्ला मुंह फेर लेता है। मुस्तकबिर दूसरी सिफत है तकबुर के साथ, बतर अल हकी हक को छुटलाता है, गमत अन्नास बतर अल हकी व गमत अन्नास, कि वो हक को छुटलाता है और अपने आप को बड़ा समझता है। तो वो तकबुर करता है, यानी अल्लाह ताला की आयात की बजाय लाहवल हदीस उसको अच्छा लगता है। तो ये है कि वो घुमंड के साथ इससे रुख फेर लेता है, कअल्लम यस्माहा, गोया कि इसने इसे सुना ही नहीं, अल्लाह की आयात पर तवज्जो ही नहीं दी। कअन्ना फी उज़ुनैहि वक्रा, गोया कि इसके कान बहरे हैं। तो उज़ुनैन था, उज़ुनैन नून तस्निया का गिर चुका है, तो उसके दोनों कानों के अंदर वकरा बोझ है। और वो काफरा जो है ये मानवी बोझ को भी कहते हैं और मादी बोझ के लिए भी ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी के कान के अंदर मैल चली जाए ना, या किसी के कान के अंदर कोई चीज हो और फिर उसको सुनाई ना दे, तो यहाँ पे जो है यही बात कही जा रही है कि उसका हाल ये है कि उसके कानों के अंदर जो है वो बोझ है, वकर है। फबशिरहु बिअज़ाबिन अलीम, अच्छा तुम इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। अब आप देखें कि दर्दनाक अजाब की खुशखबरी तो नहीं दी जाती, लेकिन ये दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी का इजहार है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती लहुम जन्नातु नईम, रहे वो लोग जो ईमान ले आए अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह के कलाम पर, नंबर दो वो आमिल सवालिहात, और जिन्होंने अमले सवाले किए, अच्छे अमल किए, उन्होंने रक्सो सुरूद और लहवो लाभ की महफिलों में बैठने की बजाय कुरान मजीद की तिलावत की। सारी दुनिया रक्सो सुरूद और नाच गाने और इसमें जो थी उसमें दिल लगाए हुए थी, नावल अफसाने गपशप, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुरान मजीद को पढ़ा, कुरान को समझा। दूसरे लोग ऐसे थे जैसे बहरे, कुरान को सुनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने कुरान को सुना, इन्होंने अमले सवाले किए। लहुम जन्नातु नईम, तो इनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं। खालिदीन फीहा, वो इसमें हमेशा रहेंगे। वादल्लाहि हक्का, ये अल्लाह का पुख्ता वादा है। सुभान अल्लाह, वहु अल अजीज अल हकीम, और वो जबरदस्त और हकीम है। इसके मानी है कि अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। कोई दुनिया में ताकत ऐसी नहीं है जो अल्लाह को वादा पूरा करने से रोक सके। और ये जो इनाम का अल्लाह ताला ने ऐलान किया है, ये हिकमत पर और अदल पर मबनी है। फिर आप देखिए जो आयत नंबर 10 है, यहां से दावत तौहीद शुरू होती है और शिर्क को रद्द किया जा रहा है। खलक समावाती बिगैर अमदिन, अल्लाह ताला ने आसमानों को बनाया बिगैर अमदिन, बगैर सुतून के। अमद जो है ऐन मीम दाल, इसके मानी है सुतून के। अल्लाह ताला ने आसमानों को बगैर सुतून के बनाया, तरौनाहा, तरौनाहा जो तुमको नजर आए। अब यहां पे जो हा की जमीर है ना, ये आसमानों के लिए आई है कि आसमान जो बगैर सतूनों के बनाए हैं, तो ऐसे सतून नहीं है जो तुम देख सको, तो बगैर सतूनों के आसमानों को अल्लाह ताला ने बनाया। तुम्हें नजर आ रहा है कि कोई सतून नहीं है, कोई तार नहीं है, कोई सुलाख नहीं है, ऐसा नहीं है। और एक छत जो है बनाए तो बगैर दीवारों के सतूनों के खड़ी नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला ने ये जो नीला आसमान है, जो हमारे ऊपर जो है वो छतरी की तरह बड़े खूबसूरत अंदाज में हर तरफ से छाया हुआ है, तो ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। वअल्का फिल अर्दी रवासिया, नंबर 2, इसने जमीन में पहाड़ जमा दिए। रवासिया, रासीन वो इसका रूट है, और इसके मानी है गाड़ देना, जमा देना। और ये उन पहाड़ों को कहते हैं जो बहुत भारी पहाड़ हैं और जमीन के अंदर कीलों की तरह, मेखों की तरह ठोंक दिए गए हैं। तो दूसरी सिफ्त क्या है, वअल्का फिल अर्दी रवासिया, कि इसने जमीन में पहाड़ जमा दिए। अन तमीदा बेकुम, कि वो कहीं लेके तुम्हें ढलक ना जाए, ढुलक ना जाए, कहीं इधर उधर ना कर हो जाए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहाड़ों को जमीन पर रखने का मकसद क्या है। मुफस्सरीन कहते हैं कि रवासिया इसका वाहिद है रासियातुन, इसके मानी है साबितातुन, यानी पहाड़ों को जमीन पर इस तरह भारी बोझ बनाकर रखा गया है कि ये जमीन पर साबित रहते हैं और जमीन हरकत नहीं करती। तो ये है असल बात कि जमीन कहीं इधर उधर डोले नहीं, इधर उधर जो है वो ढुलक ना जाए। जैसे साहिल पर जब बहरी जहाज या कश्तियां खड़ी की जाती हैं, तो उन्होंने बड़े बड़े रस्से डाल दिए जाते हैं ताकि जहाज जो है वो इधर उधर ना चले जाए। तो ये है मकसद पहाड़ों पर, जमीन पर पहाड़ों को रख देने का। तो ये दूसरी सिफ्त जो है वो अल्लाह ताला ने तौहीद की दी है। तीसरी सिफ्त है, वह बसा फीहा मिन कुल्ली दाबा, और उसने जमीन में हर तरह के जानवर फैला दिए। बसा मबसूस, ये भी आपने पढ़ा है। तो बसा का मतलब होता है फैला देना, चीज को बखेर देना। मिन कुल्ले दाबतिन, हर तरह के जानवर जमीन में फैलाए हैं। चौथी सिफ्त है, वह अंजलना मिनस समा ईमान, और इसने आसमान से पानी नाजिल किया, बारिश, हर तरह की बारिश के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। मीम वोहा इसका रूट है। पांचवी सिफ्त है, फा अम्बतना फीहा मिन कुल्ले ज़ौजिन करीम, और जमीन में किस्म किस्म की उम्दा चीजें पैदा की। ज़ौज जो है ये किस्म के मानी में है, और करीम जो है इसके मानी है हुस्ने लौन, रंग, और दूसरे मानी है कसरत मुनाफे। तो ये जो जमीन से फसल है, जो पौधे हैं, किस्म किस्म के हैं, उम्दा हैं, खूबसूरत हैं, तरह तरह के हैं। हाजा खल्कुल्लाह, ये तो है अल्लाह की तखलीक, ये तो है अल्लाह ताला की कारीगरी। फअरूनी माजा खल्कल्लज़ीना मिन दूनी, अब जरा मुझे बताओ इन दूसरों ने क्या पैदा किया है। दूनी का जो लफ्ज है ये ज़वील अज़दाद में से है, आगे पीछे ऊपर नीचे के लिए इस्तेमाल होता है। बलि ज़ालिमूना फी दलाल मुबीन, असल बात यह है कि ये जालिम लोग सिरी गुमराही में पड़े हुए हैं। दलाल गुमराही, मुबीन खुली। तो आप देखिए कि आयत नंबर 9 से लेकर 11 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने توحید کے دلائل دیے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت دلائل ہیں. اور دلائل دینے کا مقصد کیا ہے کہ ان دلائل کو، ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کو پالو، اللہ والے بن جاؤ، شرک کو چھوڑ دو. تو یہ اللہ کی توحید کی نشانیاں جو کائنات کے چپے چپے میں ہیں، کائنات کے گوشے گوشے میں ہیں، اور وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے کام جب اللہ نے کیے ہیں تو لوگوں تم ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو. تو یہ ہے پیغام جو کہ ان آیات میں دیا گیا ہے کہ اس پوری کائنات کو ایک خدائے برتر کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو اس کے نظام کو قائم رکھ سکے. تو یہ کائنات پکار رہی ہے کہ آئیے ایک رب کی بندگی کریں، ایک اللہ کی اطاعت کریں، آئیے توحید پرست بن جائیں، آئیے شرک کرنا جو ہے اس کو چھوڑ دیں. تو یہ جو سبق ہے ہمارا آج کا، تو اس سے عمل کے لیے کیا اصول نکلتے ہیں؟ اس میں پہلی جو بات ہے عمل کی وہ یہ ہے کہ کیا قرآن مجید جو ہے اس کی باتیں مجھے حکیمانہ باتیں لگتی ہیں؟ کیا قرآن سے ہدایت، رحمت اور حکمت لینے کے لیے میں احسان کے درجے کی نیکی کرتی ہوں؟ آپ اپنا محاسبہ کریں، پھر آپ اپنا جائزہ لیں کہ میں جو یہ نماز پڑھتی ہوں تو کیا نماز سے میرے اندر خدا خوفی پیدا ہوتی ہے؟ کیا میرے اندر اللہ کا قرب جو ہے وہ بڑھتا ہے؟ کیا میں نماز جب پڑھتی ہوں تو نماز کی ادائیگی مجھے اللہ کے قریب کرتی ہے؟ اور میں کیوں نماز پڑھتی ہوں؟ اس کا آپ محاسبہ کریں، جائزہ لیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز فرض جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ باتیں کرتے رہے اور خیال نہیں کیا، بازار چلے گئے، مال میں چلے گئے، اچھا پھر پڑھ لیں گے، ٹالتے رہے جہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ نماز میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، تاخیر کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت ڈرانے والی ہے کہ منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے. پھر آپ اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں. کیا آپ زکات دیتی ہیں باقاعدگی سے اور دل کی خوشی سے؟ اور پھر زکات دے کر آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ کہ مال کی محبت دب رہی ہے، رب کی رضا ابھر رہی ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر احساس ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس پایا جاتا ہے؟ جب آپ جو ہے وہ کسی سے کوئی غلطی سے کوئی بات کہہ دیتی ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا دل دکھ گیا ہے، تو اس ڈر سے کہ اگر میرے رب نے پوچھ لیا تو پھر کیا بنے گی، تو پھر آپ آگے بڑھ کر معافی مانگ لیتی ہیں. اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میری جو بھی جو کچھ میں کر رہی ہوں اللہ جانتا ہے، مجھے پتا ہے، تو کیا میرا نام اللہ کے ہاں محسنین کی صفات میں ہے؟ اللہ کے ہاں میرا نام کہاں پہ ہے؟ محسنین کی صفات میں. کیا مفلحون، مفلحون اور مفلحین کے اندر پایا جاتا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کی زندگی میں کتنے لمحات ایسے ہیں، کتنے کام ایسے ہیں جو کہ آپ کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتے ہیں کہ آپ نماز، قرآن، روزہ اور اچھی چیزوں سے آپ غافل ہو جاتی ہیں. آپ اپنا ضرور محاسبہ کریں. جیسے قہقہے مار مار کر ہنسنا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. جیسے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، ڈرامے پہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں، میچ آپ دیکھیں، میچ پر مسلمان قوم کیا، دنیا بھر کے لوگ کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، کچھ خبر نہیں ہے، گروسری لانے والی ہے، بچوں کو اسکول سے لانا ہے، بہت سے اہم کام پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ میچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں और हासिल क्या है इन सब चीजों का ना, मूवीज हैं, ड्रामे हैं, और बाज लोग कहते हैं कि नहीं इनसे भी हम सीखते हैं ना, लेकिन आप देखेंगे अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान है हदायत, हिकमत और रहमत की किताब, और इनके बारे में क्या कहते हैं कि ये तो लाहवल हदीस है, तो ना इनमें दुनिया की भलाई है ना आखरत की भलाई है, और दुनिया ये लाहवल हदीस तो पैसे दे के जो है वो खरीद लेते हैं ना, लेकिन जो नेकी के काम है वो हमें मुफ्त विरासत नहीं आते। तो ये है अपना मुहासबा करना, और आप देखें कि आपकी जिंदगी में लावल हदीस क्या क्या पाया जाता है, लावल हदीस में से कौन सी चीजें हैं जो आप दिल की खुशी से करती हैं, और कौन सी चीजें हैं जो आप पहले किया करती थी लेकिन अब आपका आपको गिल्टी महसूस होता है और आपको लगता है कि ये काम जो मैं कर रही हूँ ये सही नहीं है। तो जरूर अपना आप मुहासबा करें, क्योंकि कुरान का मताला करना ही मकसूद नहीं है, इम्तहान देना ही मकसूद नहीं है, बल्कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट के कुरान की रोशनी में अपना जायजा लेना है, और फिर देखना है कि क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है। जो पहले कर रही थी अब नहीं करना, जो पहले नहीं कर रही थी अब मुझे करना है। तो ये था सहाबा का किरदार। और फिर दूसरा ये भी होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो लोगों से डरते हैं ना, तो अब आपने क्या करना है, लावल हदीस को समझना है, उसकी फहरिस्त बनानी है, और फिर अपना मुहासबा करना है कि कितनी लावल हदीस को छोड़ दिया है, कितनी अभी बाकी है और उसको मुझे छोड़ना है, और फिर फौरी छोड़ने की इंशाल्लाह कोशिश करनी है। तो अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन मुसलमान बनाए, हमारे जो गुनाह है उनको माफ कर दे, और अब तक की जिंदगी में ऐसे लम्हात और ऐसी घड़ियां, ऐसे दिन, ऐसे औकात जो ऐसे ही गुजार दिए, उनका कुछ भी हासिल नहीं है, बस अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, और अल्लाह अकबर, और हमें उन अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले जिससे अल्लाह राजी हो जाता है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।